Om Shanti. Good morning. So fresh? आप सब एक्सरसाइज कर रहे थे, इतना देख करके अच्छा लग रहा था, इतना उमंग उत्साह। यही उमंग उत्साह सारा दिन रहना चाहिए था। एक्सरसाइज भी जब पहले दिन करते हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिसने कभी एक्सरसाइज न की हो, उसको जब पहला दिन एक्सरसाइज करनी पड़े तो थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं होता, बेंड करने में, इधर बेंड करने में, इधर बेंड करने में। और आपको पता है एक्सरसाइज के एक दो दिन बाद तो और ज्यादा दर्द होता है ऐसा अनुभव है। तो कई लोग फिर क्या करते हैं, पहले दिन तो उमंग उमंग में कर लेते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन जब मसल्स थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना शुरू होती है तो थोड़ा थोड़ा जो पेन होता है, फिर कहीं क्या करते हैं छोड़ देते हैं, और कहीं क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। और जो कंटिन्यू करते हैं वो करते 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 इतना फिट हो जाते हैं कि फिर वो अपने बॉडी के अंग को जहां मोड़ना चाहें वहां मोड़ सकते हैं। यही तो एक्सरसाइज है ना, कि फिजिकली हम इतने इतने फ्लेक्सिबल हो जाएं, इतने फ्लेक्सिबल हो जाएं कि जहां अपने बॉडी के पार्ट को मोड़ना चाहे वहां मोड़ दें। एक है फिजिकल फिटनेस, दूसरा है इमोशनल फिटनेस। इमोशनल फिटनेस किसको कहेंगे? फिजिकल तो हमको समझ में आ गया कि एक्सरसाइज करते 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 एक दिन जरूर ऐसा आ जाता है कि अपने बॉडी पार्ट्स को हम जहां भी करना चाहें कर सकते हैं ना, उसको मोल्ड कर सकते हैं, बहुत इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इमोशनल फिटनेस क्या है? मन को जहां लगाना चाहे लगा सके, जो सोचना चाहे, जितना समय सोचना चाहे, और जब जिस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहे तो भी मन को फुल स्टॉप लगा सके। कभी कभी होता है कोई मीटिंग आपकी 5 दिन के बाद है, आपको अभी उसके बारे में नहीं सोचना है, तो भी मन क्या करता है, वहां चला जाता है। सिर्फ प्लान ही नहीं करता है, फियर भी क्रिएट कर लेता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो क्या हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि मन को उस चीज के बारे में नहीं सोचना है तो भी सोच रहा है, जिस चीज के बारे में सोचना है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। तो इमोशनल फिटनेस है कि मेरा मन है ना, जो सोचना है, जितना समय सोचना है, नहीं सोचना है, मेरे कंट्रोल से। जो बहुत इमोशनली फिट है, यहां पर बहुत फिट है, आपको पता है उनकी निशानी क्या होती है? एक बार परमात्मा ने सुनाया था कैसे डिसाइड होते हैं ये नंबर। सब मेडिटेट कर रहे हैं, कौन पहला कौन दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा हमारी स्थिति कहां तक पहुंची है। हम रोज मेहनत तो कर रहे हैं पर पता भी तो चलना चाहिए ना कि हम कितने मेंटली कितने इमोशनली स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। कैसे पता चलता होगा, क्या तरीका है फाइंड आउट करने का? और फिर आप भी चेक कर सकते हैं कि आप कितने मन से शक्तिशाली हैं। क्या तरीका होगा करना है चेक अपने आप को? जो जितना ज्यादा मन से शक्तिशाली है वो उतना जल्दी किसी भी व्यर्थ बात को फुल स्टॉप लगा सकता है। एक है फुल स्टॉप लगाना, दूसरा है क्वेश्चन मार्क लगाना। आप दोनों देखो तो मात्रा भी क्वेश्चन मार्क की कैसी है, थोड़ी सी टेढ़ी बाकी है, और फुल स्टॉप डॉट। तो मन कभी कभी होता क्या है, उसको लगाना चाहिए फुल स्टॉप, पर वो करता क्या है, तो क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, इतनी जोर की क्यों बोला, बोलना ही था तो कोने में ले जाकर बोलना था, वो कौन होते हैं बोलने वाले, तो ये सारे क्या हैं, प्रश्न। और परमात्मा कहता है जो प्रश्न चित्त है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। जो प्रश्न चित्त है वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। तो प्रसन्न चित्त होने के लिए किसको खत्म करना पड़ेगा, प्रश्नों को। एक प्रश्न होते हैं जायज, हमें जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, वो नहीं। लेकिन एक क्वेश्चंस कौन से होते हैं, वेस्ट, क्यों, क्या, कैसे, के कौन करता है, के कौन करता है। तो आप कौआ तो नहीं है ना, आप तो सब कौन बैठे हुए हैं, हंस बैठे हुए हैं। और हंस क्या करता है, हंस क्या करता है, या तो तैरता है या उड़ता है। तो आप कौए नहीं है, कौआ क्या करता है, वाई वाई वाई। और होली हंस क्या करते हैं, फ्लाई फ्लाई फ्लाई। फ्लाई माना ऊंची स्थिति, जब ऊंची स्थिति होती है ना तो हर चीज नीचे की कैसे दिखाई देती है, छोटी। आप प्लेन में बैठ करके नीचे देखो सब कुछ कैसा दिखाई देता है, छोटा। बॉम्बे में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, लोग खास ऊपर जाते हैं टेरेस पर। अब आप 60 माले 70 माले ऊपर टेरेस से नीचे देखो तो सब कैसा दिखाई देता है, छोटा छोटा छोटा। ऐसे ही जब हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है तो हर बात कैसी लगती है, हर बात कैसी लगती है, छोटी है। आपको इस बात का अनुभव के लिए, आप किसी दिन बहुत खुश हैं, मूड बहुत अच्छा है, घर में सेलिब्रेशन है, किसी से कोई नुकसान हो जाता है, आप क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, ये सब तो होता रहता है। वही मैं हूं, वही मैं आज खुश हूं, वही मेरी आज अच्छी स्थिति है, तो हम कहते जाने दो कोई बात नहीं। वही मैं अगर परेशान हूं और अगर किसी से छोटा सा भी नुकसान हो जाए तो वही मैं क्या कहता हूं, ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया, ध्यान से करना चाहिए था, देख के करना चाहिए था। तो वही मैं अच्छी स्थिति में बड़ी बात भी मुझे कैसी लगती है, दूसरों का तो छोड़ दो, हम कहते इसकी बहुत शक्तिशाली स्थिति है इसलिए इसको हर बात छोटी लगती है, ये ना बहुत सेंसिटिव है इसको हर छोटी बात बड़ी लगती है, वो तो हमने दो जनों के अंदर डिफरेंस किया, वो तो छोड़ो, मैं ही हर दिन थोड़ी ना सेम होता हूं। मैं भी जिस दिन बहुत खुश हूं, स्टेबल हूं, सेलिब्रेशन में हूं, पिकनिक में हूं, तो मुझे हर बड़ी बात कैसी लगती है, छोटी, क्योंकि उस दिन मेरी मन की स्थिति बहुत ऊंची थी। तो मेरी मन की स्थिति बहुत ऊंची थी इसलिए मुझे हर बात छोटी लग रही थी। और जिस दिन सुबह से ही मेरा मन थोड़ा सा उदास होता है, परेशान होता है, उस दिन हर बड़ी बात कैसी लगती है, हर छोटी बात कैसे लगती है, बड़ी लगती है। तो किसको बढ़ाना है, आने वाले समय में बातें कम होंगी कि बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। तो बातों को नहीं चेंज कर सकते हैं ना, कंपटीशन, टारगेट, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता जा रहा है। हम समय कहते हैं कौन सा चल रहा है, कलयुग, उसमें भी कहेंगे कौन सा चल रहा है, घोर कलयुग। तो जैसे गर्मी की सीजन होती है तो गर्मी के सीजन में कोई कहे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो आप कहेंगे क्या गर्मी का सीजन है तो गर्मी होगी ना, आप अपना बचाव करो। तो गर्मी के सीजन में हम अपना बचाव करने के लिए क्या क्या करेंगे, कूलर लगाएंगे और एसी लगाएंगे और हाँ ज्यादा पानी पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे, नारियल पानी पिएंगे और हाँ जी कैप पहनेंगे, ऐसी ड्रेस पहनेंगे जो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो, हम अपने को प्रोटेक्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि गर्मी के सीजन में गर्मी तो होनी है तो हम अपना बचाव करते हैं, सर्दी के सीजन में सर्दी होनी है तो हम अपना बचाव करते हैं, ऐसे कपड़े पहनेंगे, हीटर लगाएंगे, वैसा खाना खाएंगे जिससे बॉडी को गर्माहट मिले। तो जैसे गर्मी के सीजन में और सर्दी के सीजन में हम अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी किसका सीजन चल रहा है, किसका सीजन चल रहा है? अभी अभी आपने कहा कौन सा समय चल रहा है, तो कलयुग माना क्या होता है, घोर कलयुग। तो घोर कलयुग माना कौन सा सीजन चल रहा है, अनसर्टेनिटी, अचानक कोई भी बात कैसे आ जाती है, अचानक कहते अभी तो पता ही नहीं चलता, सुबह तक बिल्कुल ठीक थे, अचानक हार्ट अटैक हो गया, कल तक अच्छी खासी नौकरी थी, आज अचानक छूट गई, ऐसे हो रहा है ना अभी, सब कुछ क्या हो रहा है, अचानक अनसर्टेन, जैसे दुखों की सीजन चल रही है। तो इस सीजन में बाहर नहीं लड़ना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है। जैसे वहां सीजन अनुसार हमने अपने को प्रोटेक्ट किया ना, ऐसे यहां सीजन अनुसार हमें अपने को प्रोटेक्ट करना है। और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। और ये शक्ति आपकी दो तीन दिन में ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई है, हो गई है कि नहीं हो गई, जैसे एक्सरसाइज में दूसरे तीसरे चौथे दिन से थोड़ी थोड़ी फिटनेस आने लग जाती है, नहीं करते हैं तो भी चलता है, लेकिन करने के बाद हर कोई कहेगा बड़ा अच्छा लगा, करते समय थोड़ी मेहनत लग रही होती है लेकिन करने के बाद कहते बहुत एनर्जेटिक लगा, बहुत फ्लेक्सिबल लगा, बहुत अच्छा लगा, आज मैंने एक्सरसाइज करी ना मेरा सारा दिन बहुत हल्का और फ्लेक्सिबल और एनर्जेटिक बीता, कहते हैं ऐसे कि नहीं। तो करने से पहले थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन कोई भी चीज करते समय अगर प्राप्ति याद हो, उससे होने वाली प्राप्ति याद हो तो करने का उमंग आ जाता है। कभी कभी करने को याद नहीं करना चाहिए क्योंकि करने वाला प्रोसेस कभी कभी थोड़ा सा हो सकता है एफर्ट है, और एफर्ट हमें मेहनत अच्छी नहीं लगती ना, प्राप्ति तो सबको अच्छी लगती, तो जो एक्सरसाइज करता है उसको प्राप्ति दिखाई देती रहती है, अच्छा मैं फ्लेक्सिबल हो जाऊंगा, मैं फिट हो जाऊंगा, मैं पतला हो जाऊंगा, मैं अच्छा दिखाई दूंगा, तो वो जो प्राप्ति है वो उसको अंदर में उमंग दिलाती है, नहीं नहीं मुझे 5 दिन 6 दिन तो एक्सरसाइज करनी ही है। ऐसे मेडिटेशन से क्या प्राप्ति हो जाएंगे, क्या प्राप्ति हो जाएंगे, क्या प्राप्ति होंगे, हाँ जी, शांति और शक्ति। और विजुलाइज करो अपने आप को कि अगर हम 1 महीना भी लगातार मेडिटेट करेंगे, पता तो होना चाहिए ना प्राप्ति, फिजिकल एक्सरसाइज की प्राप्ति पता है, इसलिए आजकल देखो जो नई एक्सरसाइज करने वाले भी हैं, कर रहे हैं आजकल के, नहीं पहले इतना नहीं था, अभी लोग वॉक करेंगे, जिम जाएंगे, हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, क्यों, प्राप्ति का पता है। ऐसे ही अगर हम रोज मेडिटेट करेंगे तो क्या प्राप्ति होगी, हाँ जी, विकर्म विनाश होंगे, हाँ जी, मन का संतुलन बना रहेगा, शांति मिलेगी और खुशी मिलेगी और स्टेबल हो जाएंगे, परमात्मा से ड्रिल कर सकेंगे, कनेक्ट कर सकेंगे, हाँ, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएंगे, और क्या चाहिए, जो सारी चीजें आप कह रहे हो वो तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, शांति खुशी प्यार, शांति को जगह में ढूंढ रहे हैं, प्यार को लोगों में ढूंढ रहे हैं, खुशी को चीजों में ढूंढ रहे हैं, संतुलन समझते हैं जब सब बाहर ठीक हो जाएगा तो यहां पर अपने आप संतुलित हो जाएंगे, वो सब बाहर थोड़ी ना है, वो इस एक प्रैक्टिस से आत्मा को सब कुछ अनुभव होना शुरू हो जाता है। और जब आत्मा को सब कुछ अनुभव होना शुरू हो जाता है तो उसके जीवन में ऑटोमेटिकली संतुष्टता आती है। नहीं तो जीवन पता है कैसा होता है, इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। क्यों चाहिए चाहिए? क्योंकि हर चाहिए से मुझे क्या मिल रहा है, हर चीज जो मेरी लिस्ट में चाहिए है, डिजायर्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं। एक तरफ गीता में लिखा हुआ है क्या बनो, इच्छा मात्रम अविद्या, आपको विद्या भी नहीं हो इच्छाओं की, और फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं नहीं नहीं इच्छाएं तो होनी चाहिए। तो इच्छाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या क्या इच्छाएं होती है हमारी, एक लंबी लिस्ट होती है ना, और एक इच्छा पूरी होती है उसके पीछे दूसरी, फिर वो पूरी होती है उसके पीछे तीसरी, और हमें लगता है हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो हम कैसे हो जाएंगे संतुष्ट। और धीरे धीरे अनुभव क्या कह रहा है कि इतना सब कुछ आ गया है, इतना सब कुछ आ गया है, तो भी संतुष्टता की जगह क्या बढ़ती जा रही है, असंतुष्टता। क्यों क्यों? क्योंकि हर चीज जो हमें चाहिए उस चीज से हम क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं, खुशी। पर वो चीजें खुशी देने के लिए तो बनी नहीं हुई ना, वो चीजें खुशी देने के लिए बनी नहीं है। वो चीजें क्या देने के लिए बनी है, आज एक गाड़ी है, वो गाड़ी क्या देने के लिए बनी है, शरीर को कंफर्ट, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करें तो आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर सके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर मर्सिडीज में बैठे हैं तो खुश भी होंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई मर्सिडीज में बैठा है लेकिन थोड़ा सा उदास और परेशान है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल हो सकता है, पर यहां पर अगर उसका मन कमजोर है और गलत सोच रहा है तो वो इतने कंफर्टेबल सीट पर भी बैठ करके उदास और परेशान हो सकता है। वहीं पर कोई बस में भी बैठा हो सकता है, साइकिल पर भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका मन सही सोच रहा है, वो मन का मालिक है, तो हो सकता है बॉडी से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो लेकिन मन से खुश हो। तो चीजें लेना गलत नहीं है लेकिन चीजों का पर्पस है। गाड़ी कंफर्ट देने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से ट्रैवल कर सके, फोन आप एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके, घड़ी आप टाइम देख सके, लेकिन हमारा जो मीडिया है वो ये नहीं कहता है। आप न्यारे होकर के टीवी पर हर एड देखो तो वो एड क्या दिखा रही है, कि आप ये लेंगे तो क्या मिलेगी। हर एड आप देखो, चाहे वो टूथपेस्ट की एड है, चाहे वो लोन पे खरीदे हुए घर की एड है, वो हर एडवर्टाइजमेंट आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, कि आप ये लेंगे तो आपको क्या मिलेगी। एक स्माइलिंग सा चेहरा होता है कि नहीं, और हम खाली हैं तो हम फंस जाते हैं। एक्चुअली अगर हम साइलेंस में बैठ करके अपने को पूछे ना, तो हमें चीजें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें वो परिवार का प्यार चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कहां से मिलेगा। तो वो एड मुझे ऐसा दिखाती है कि शायद लोन पर घर खरीद लेंगे, कट्ठे बैठेंगे, कट्ठे उस गाड़ी में कहीं घूमने जाएंगे तो क्या मिलेगी, खुशी। और मिलती भी है अल्पकाल की, टेम्पररी। आप कोई चीज लेकर के आते हो ना तो वो स्टिमुलेंट का काम करती है, तो मन कहता है वाह मैंने खरीद लिया, अब मेरे पास भी गाड़ी है, अब हम मिलकर घूमने जाएंगे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक दिन दो दिन वो चीज हमें अच्छा सोचने में मदद करती है। कोई ना कोई आधार हम लेते हैं, उस आधार को यूज करके अच्छा सोचते हैं, चीज वहीं रह जाती है थोड़े समय के बाद, चीज वहीं रह जाती है, सोच बदल जाती है। अब सोच में तो ये टेंशन आ गया कि लोन कैसे उतारेंगे, ये कैसे करेंगे, तो वो सारी खुशी किस में बदल जाती है, वो बोझ में बदल जाती है। तो चीजें लेना गलत नहीं है लेकिन चीजें शरीर को सुख देंगी, और आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं और इच्छाएं सेम नहीं होते हैं। आवश्यकताएं होती हैं, वो कहते तो तीन लाइन तीन शब्द में ही आवश्यकताएं बोल देते थे। कौन से तीन शब्द थे? रोटी कपड़ा मकान। किसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है? और उससे भी बहुत ज्यादा हमारे पास है कि नहीं? उससे भी बहुत ज्यादा। तो आवश्यकताएं सबकी पूरी हो गई हैं, लेकिन हो गई हैं या हो जाएंगी वो इतनी बड़ी बात नहीं है। गांधी जी बहुत सुंदर कहते थे, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो नीड्स तो पूरी हो जाएंगी क्योंकि वो शरीर की जरूरतें हैं, जरूरत नीड आवश्यकता, लेकिन इच्छाएं वो होती हैं जिससे हम थोड़ी 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 खुशी मन को देते हैं, टेम्पररी अल्पकाल की थोड़ी थोड़ी थोड़ी। और फिर होता क्या है, हम इस जाल में फंस जाते हैं क्योंकि जिस चीज से हमें थोड़ी सी खुशी मिली है तो हमें ये नहीं पता कि उस चीज को आधार बनाकर मैंने अच्छा सोच करके वो खुशी क्रिएट की थी। मुझे ये नहीं पता, मुझे लगता है खुशी किसने दी थी? चीज ने। तो मेरा मन कहता है अब मुझे क्या चाहिए? एक और। एंड सबसे बड़ा नुकसान क्या है एडिक्शंस का, कि जो चीज आपको आज जितनी खुशी दे रही है वो कल उतनी नहीं देगी। तो आज मारुति आपको जितनी खुशी दे रही है कल मारुति उतनी खुशी नहीं दे सकती। अब कौन सी चाहिए? नहीं दे सकती, वो सेम नहीं दे सकते। तो अब आपको कौन सी चाहिए? सीधा मर्सिडीज। पर भाव है कि डोज तो बढ़ानी ही पड़ेगी आपको। इस महीने जितना पे पैकेज खुशी दे रहा है, सुख नहीं खुशी। खुशी क्या होता है? एक संकल्प, अच्छा इतनी मेरी इनकम है। तो अगले छह महीने के बाद अगर वो इंक्रीमेंट नहीं होता तो सोच कैसे परिवर्तन हो? सोच को परिवर्तन होने के लिए कहना तो पड़ेगा ना, मेरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, बोनस मिला। तो वो सोच खुशी देती है, लेकिन सोच हमें क्रिएट करनी आती नहीं है, इंडिपेंडेंटली क्रिएट करनी आती नहीं है। तो हमने उसको हर चीज के ऊपर डिपेंडेंट करके रखा हुआ है और इसलिए हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और जब हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ती जाती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान, खुशी भी एक ऐसे है जैसे किसी को शराब की लत लग जाए, एडिक्शन, तो वो शराब उसको टेम्पररी खुशी देता है ना, ईज करता है, रिलैक्स फील करता है, थोड़े समय के लिए उसको सारा दुख भूल जाता है। तो आप किसी को बोलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उससे नहीं छूटती है क्योंकि उतना समय उसको क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो वो झूठ बोल करके भी पिएगा, चोरी करके भी पिएगा, छिपा करके भी पिएगा, जब तक उसके अंदर का खालीपन आप किसी और चीज से नहीं भरते तब तक वो पिएगा। ऐसे ही मुझ आत्मा को खुशी तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। आप अगर क्रिएट नहीं करोगे खुद से तो वो फिर कहां से लेगी? बाहर से। अब उसकी बाहर की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और उसकी कैपेसिटी शायद इतनी नहीं है, उसकी इनकम शायद इतनी नहीं है, तो फिर उसका मन कहता है गलत करने के लिए। अभी तक उसका मन गलत करने के लिए नहीं कहता था। अनएथिकल हम क्यों होते हैं? क्यों हम कहते हैं थोड़ा झूठ बोल लें, थोड़ा रिश्वत ले लें, थोड़ा चोरी कर लें? चाहिए चाहिए, क्योंकि खुशी तो मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए, और मेरे से क्रिएट नहीं। जैसे खाना है, मुझे चाहिए चाहिए ना, पेट को तो चाहिए चाहिए। आप खुद से बना करके नहीं खाओगे तो आप बाहर से ऑर्डर करोगे। आप बाहर से ऑर्डर भी नहीं कर सकते तो आप चोरी करके भी खाओगे। खाना तो चाहिए ना, क्योंकि वो शरीर की क्या है? खुराक है। तो कहते मजबूरी है, उसने मजबूरी में ऐसा किया। ऐसे खुशी आत्मा की खुराक है, आप उसको क्रिएट नहीं करेंगे तो वो मजबूर होकर के फिर गलत करके भी गलत तरीकों से टेम्पररी खुशी लेती जाती है। और फिर धीरे धीरे हम इस एडिक्शन में इतना फंस जाते हैं, वो इच्छाएं, फिर एडिक्शंस, फिर डिपेंडेंसी, कि हमारी जीवन एक मालिक से किसकी हो जाती है? गुलाम की, गुलाम की। और आज का जो सत्र है राजयोग का मेडिटेशन, वो मेडिटेशन परमात्मा हमें सिखाता ही क्यों है? राजयोग तो दो शब्दों से बना हुआ है ना, राजा और योग। ये ऐसा योग है जो हमें क्या बना देता है? राजा। जो हम गुलाम बन गए थे चीजों के, लोगों के, मौसम के, दूसरों के व्यवहार के, अपने व्यवहार के गुलाम गुलाम गुलाम, फिर राजयोग का मेडिटेशन हमें वापस स्वराज्य दिलाता है, मालिक बनाता है कि हम किसी चीज के ऊपर क्या नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, बहुत फ्रीडम की लाइफ है। और इसलिए जब आप किसी को देखेंगे ना, यहां पर भी जो योगी है, आपको लगेगा बड़ा इन्होंने ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, पाया पाया पाया, कब छूट गया पता ही नहीं चला, क्योंकि आवश्यकताएं तो हर एक की बहुत थोड़ी सी होती है ना, कितने कपड़े, कितना खाना, कितना सब, वो तो थोड़ा सा होता है। जब आत्मा भरने लग जाती है, जो बहुत सुंदर है ना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, पहला कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा, सोच के बताओ, पहला कौन सा होगा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, पहला कौन सा होगा, सिंपल लिविंग। कैसे, सारी थिंकिंग का आधार तो चीजें बनी हुई है, तो सिंपल लिविंग क्यों नहीं हो रही है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, क्योंकि हर चीज टेम्पररी खुशी दे रही है, टेम्पररी लोगों से रिस्पेक्ट प्राप्त करा रही है, टेम्पररी है, वो दिल का मान नहीं है। एक होता है दिल का मान, दिल का स्नेह, दुआओं वाला मान, और एक होता है ठीक है दिखावे का मान भी होता है। तो जो ये सारी चीजें हमें दिला रही हैं, टेम्पररी खुशी, टेम्पररी प्यार, टेम्पररी मान, इसके कारण हमारी लाइफ सिंपल नहीं हो सकती, चाहिए चाहिए वाली है। लेकिन एक बार हाई थिंकिंग हो गई, आपके मन में उठने वाला हर संकल्प राइट है, प्योर है, हर संकल्प प्योर है, तो वो क्या जेनरेट करेगा, वो क्या जेनरेट करेगा, हर थॉट क्या क्रिएट करता है, थॉट के बाद क्या नेक्स्ट होता है, जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे, फीलिंग, जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे। अभी अभी कहेंगे मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, बहुत खुशी आपको अनुभव होगा। अभी अभी कहेंगे मैं कहां फंस गया, फंस तो नहीं गए ना, अच्छा फंसे, फंसे भी हैं तो कैसे फंसे ऐसे ही फंसे थे हम सब एक बारी, किसी ने बुलाया, किसी ने इनवाइट किया, कहा दो दिन देख कर आते हैं, तीन दिन देख कर आते हैं, अच्छी जगह है, हो करके आते हैं, फिर समझ में आया ये दो तीन दिन की बात नहीं है, ये तो जीवन जीने का तरीका है। और इसीलिए फिर वापस जाकर के अपने सेंटर्स पर जाते हैं, क्योंकि यहां तो नहीं रह सकते। सेंटर्स बने हुए क्यों हैं, सेंटर्स बने ही इसलिए हैं कि ये चार्जिंग हमें अपने शहरों में भी मिलती रहे, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर, हर किलोमीटर की दूरी पर एक एक सेंटर है, वहां पर इतनी सारी बहनें हैं जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पित किया है, किसकी सेवा में, आप लोगों की सेवा में, सिर्फ एक लक्ष्य के साथ कि ये भी अपने पिता से जुड़ जाएं, जो इन गुणों का सागर है, और उसी से अगर सारी प्राप्ति कर लें तो इनका भी भटकना, इनका भी ढूंढना, इनका भी धक्का खाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम आपस में कौन है, हम दोनों आपस में कौन है, भाई बहन है। मुझे मेरा पिता मिल जाए और आपको न मिले तो मुझे मुश्किल तो होगी कि नहीं होगी, कैसे नींद आएंगी रात को, कि भाई जो मुझे मिला है ढूंढ तो वो भी यही रहे हैं, इनको भी अगर वो मिल जाए तो जो प्राप्ति हमें हुई है वो इनको भी हो जाएंगी, तो कट्ठे हम मिलकर के सत्युग बनाएंगे। आपको कोई चीज अच्छी मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिनसे प्यार है उनको देंगे कि नहीं देंगे, रख नहीं सकते आप। खाने की भी एक चीज होगी ना, आपको अच्छी मिलेगी, आप कहेंगे पहले क्या करें, घर लेकर के जाएं, बच्चों के लिए लेकर जाएं, परिवार के लिए लेकर जाएं, शेयरिंग हमारा नेचर है। कई बार कई लोगों को लगता है ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मिला है वो होता है वो सबको मिले, इंद्रियों का सुख नहीं, कौन सा वाला सुख, कौन सा वाला सुख, एक इंद्रियों का सुख, पहनने का, खाने का, घूमने का, देखने का, टेम्पररी सुख, और दूसरा सुख कौन सा है, अतिंद्रिय सुख, ब्लिस, जो कब मिलती है, जब आत्मा किससे जुड़ती है, परमात्मा जो उसका पिता है, जो उसका पिता है। क्यों पिता? हर धर्म में पिता से तो याद किया ना, सुप्रीम फादर कहा, परम पिता कहा, गॉड फादर कहा, फादर। सिर्फ भगवान नहीं है, सिर्फ प्रभु नहीं है, पिता है। क्योंकि जहां फादर आ जाता है तो फादर के साथ अगली चीज क्या जुड़ जाती है, ये मेरा फादर है तो मैं इसकी किस चीज की हकदार हूं। फादर से क्या मिलती है, प्रॉपर्टी। तो जो फादर है उसकी प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा, बच्चे। तो वो मेरा फादर है, सुप्रीम फादर, परम पिता है फादर की नहीं है। हमने गीत गाए हैं भक्ति में, नहीं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सब कुछ, तुम हो। तो अभी बताना मेरे पिता के पास क्या प्रॉपर्टी है। हर धर्म में उस पिता को कैसे याद किया है, हर धर्म में एवरी रिलीजन ने गॉड को कैसे याद किया है, कैसे याद किया है, गुणों से याद किया है। आप कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, कोई भी, गुणों से याद किया। प्यार का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, रहम का सागर है, शक्तियों का भंडार है। ऐसे परमात्मा को याद करते हैं कि और किसी तरीके से याद करते हैं कि किस चीज का सागर है, डिग्री का सागर है, गाड़ी का सागर है, किसका सागर है वो। क्योंकि हम उसके सामने खड़े होकर के बड़ी अलग अलग चीजें मांगते हैं, वो चीजें वो हमें नहीं दे सकता है, वो हमें शक्ति देता है आप कर्म करके जो अपने जीवन में प्राप्त करना है कर लो। लेकिन ये तो रियलाइज होना चाहिए ना कि वो किस चीज का सागर है। क्यों भगवान को याद करें? योग करना है ना, हम कहते हैं योग माना क्या, उसको याद करो, उसको याद करो। क्यों याद करें, क्यों याद करें? भगवान को याद करने से क्या होगा, क्यों याद करें, क्यों याद करें? प्राप्ति पता होनी चाहिए ना, क्यों याद करें? जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है। इसलिए हम उसको बीच बीच में थोड़ा सा कहते रहते हैं, मेरा ये काम ठीक कर दो तो इतना, ये वाला काम ठीक कर दो तो इतना। संस्कार बन जाता है ना, तो फिर वो संस्कार भगवान के साथ भी रिश्ते में आने लग जाता है। दुनिया में थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो उसके साथ भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। कहाँ वो अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, उसको हम कहते हैं ये वाला काम हो जाएगा ना तो इतने नारियल, ये वाला काम हो जाएगा ना तो इतना चढ़ावा, अच्छा ही नहीं लगता, रॉयल्टी नहीं लगती इसके अंदर। वो हमारे काम कर सकता है, वो हमारे काम कर सकता है, क्या लगता है आपको? वो हमारे काम, वो सब कुछ हमारे जीवन में ठीक कर सकता है? हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है कि हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है? देखो एक मिनट लगा आपको कहने में। एक है सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, एक है कि जो हम कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस लौट करके आ रहा है। वो अलग बात है कि करते समय हम कैसे भी उसको जस्टिफाई कर देते हैं, करना पड़ता है, थोड़ा सा करना पड़ता है, भले हर्चा नहीं है, लेकिन करते समय ये भी तो याद रखना चाहिए ना कि जो एनर्जी ऐसे जाएंगी वो आज नहीं तो कल वैसे लौट करके आएंगे। ये सवाल हम जीवन में बहुत बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, करते हैं कि नहीं करते? आपने किया है ये सवाल कभी जीवन में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी नौकरी अचानक क्यों चली गई? तो हम ये क्यों वाला सवाल बहुत बार करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी भी हमने कर्म गलत करते समय अपने को कहा है मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं, मैं किसी को क्यों डांट रहा हूं, मैं किसी से रिश्वत क्यों ले रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों नहीं हम ये सवाल अपने से पूछते कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये भी तो सवाल पूछने वाला है ना। और हम इसमें ये जस्टिफिकेशन थोड़ी ना दे सकते हैं कि सब कर रहे हैं तो इसलिए कर रहा हूँ, फिर तो जो सबका भाग्य होगा, जो सबका भाग्य होगा वही मेरा भी भाग्य हो जाएगा। करते समय अपने को बार बार कहना होता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। किस किस को भविष्य का डर लगता है, किस किस को भविष्य का डर लगता है, हाथ खड़ा करे। जिसको भविष्य का डर लगता है, फ्यूचर का फियर होता है, लंबा हाथ खड़ा करे। आज एक लाइन पक्की कर ले, भविष्य वर्तमान की परछाई है, भविष्य वर्तमान की परछाई है और कुछ नहीं है। आप भविष्य के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप वर्तमान को ठीक करेंगे, माना जो एनर्जी आप वर्तमान में भेजेंगे वही तो लौट करके भविष्य में आनी है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आपने कर्म करना है वही आपके भाग्य के रूप में लौट करके आ जाना। तो करते समय मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे राइट करना ही है। चाहे सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो, मैं एक तरफ खड़ा हूं। सच तो बिठो नच, मना जो सच्चा होता है वो अंदर से नाचता रहता है, चाहे बाहर से लोग उसको दो बातें कह भी दें, चाहे उसकी नौकरी भी छूट जाए, चाहे उसकी थोड़ी सी इंसल्ट भी हो जाए, लेकिन सच्चा अंदर नाचता रहता है। और क्योंकि वो नाचता रहता है, एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुल जाता है। अंदर से वो बहुत शक्तिशाली है ना, ये लाइन याद रखो। सच तो बिठो नच, मना अगर आप राइट हो तो आप अंदर बहुत कंफर्टेबल होंगे। When you do right, there is peace within. आपको अंदर में बहुत comfortable लगेगा, आपको अंदर में बहुत खुशी लगेगी। और गलत करने के बाद बाहर काम हो सकता है, temporary आपकी जीत हो सकती है, आपको विजय मिल सकती है, लेकिन अंदर में खाली खाली खाली। तो चाहिए खुशी, खुशी को compromise करके बाहर कुछ कर भी लिया तो वो चीज सुखी नहीं देगी। सब कुछ प्राप्त करना है, लेकिन सही तरीके से प्राप्त करना है, ये बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग। मुझे इजी भी नहीं करना है। आजकल सब लोग ये पूछते रहते हैं, इजी तरीका बताओ, इजी तरीका बताओ। मुझे इजी नहीं करना है, मुझे वो करना है जो इजी करना है कि राइट करना है, चूज करो। राइट मुश्किल हो, राइट मुश्किल हो, चलेगा नहीं चलेगा, पक्का चलेगा। राइट मुश्किल हो तो भी वो करना है, 10 बार करेंगे वो इजी बन जाएगा। हर चीज करते करते इजी हो जाती है। अरे ए भी हम लिखते थे अल्फाबेट में, ए भी, तो मम्मी कैसे लिखवाती थी, ऐसा हाथ पकड़ा, फिर वो ऐसे 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 कितने पेज वो हाथ पकड़ करके लिखवाती थी, फिर जाकर के हमें एक अल्फाबेट लिखना आता था। आज आज हम पूरी किताब भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वो चीज बहुत डिफिकल्ट थी लेकिन राइट थी। आज इजी हो गई कि नहीं हो गई? आज हमारा कोई छोटा बच्चा होगा उसको ए लिखने में उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन हमें कितनी देर लगेगी? हम पूरा पेज भी एक मिनट में लिख लेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? राइट करना है, राइट करते करते राइट इजी बन जाएगा आपके लिए। तो जब मुझे ये समझ में आ गया कि जो हम करेंगे वही लौट कर आएगा, तो बस अपने कर्मों को ही ठीक कर लेना, उसको याद करने की जरूरत ही कहां है। क्यों याद करना है भगवान को? हाँ जी, उनसे गुण और शक्ति मिलती है। गुण और शक्ति से भी पहले परमात्मा, उसकी पहली प्रॉपर्टी पता क्या है? जो योग आप आज 3 दिन से यहां पर है, क्या मिल रहा है आपको? शांति तो मिल रही है, वो आप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आप राइट सोच रहे हैं। और राइट आप इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि आप अच्छा सुन रहे हैं। मेरा परम पिता ज्ञान का सागर है, वो मुझे राइट और रॉन्ग की समझ देता है और फिर उस समझ पर चलने की शक्ति भी देता है। लेकिन हम ऐसे समय पर अभी रह रहे हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। दुनिया ने हर रॉन्ग को राइट बना के रखा हुआ है। इस समय स्ट्रेस है, राइट है, रॉन्ग है, लेकिन वो इसके पीछे एक शब्द ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस। और कहते नहीं नहीं थोड़ा स्ट्रेस तो होना चाहिए, आपके परफॉर्मेंस बढ़ेंगे। आप खुद बताओ, आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है कि आपसे गलतियां होती हैं? आप खुशी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो कि स्ट्रेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो? आज व्यक्ति खुशी में कितने काम कर लेता है, उसको खुशी होती है ना, घर में कोई आ रहा है उसको खुशी है, वो कितना खाना बना लेता है, कितना काम कर लेता है। वहीं अगर आज वो परेशान है तो उसे रूटीन का काम भी नहीं होता। तो केवल किसी ने कह दिया पॉजिटिव स्ट्रेस तो थोड़ी ना पॉजिटिव हो गया। राइटियस एंगर, एंगर जब जब हमने गुस्सा किया हमने अंदर क्या अनुभव किया, जब जब गुस्सा किया क्या अनुभव किया हमने? अच्छा लगा हमें? हमारी मन की स्थिति चली गई, हमारे रिश्ते खराब हो गए, हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई, हमारा नुकसान हुआ। बुद्धा बहुत सुंदर कहते हैं, आप गुस्सा करेंगे उसकी सजा आपको मिलेगी नहीं, गुस्सा ही अपने आप में सजा है, क्योंकि गुस्सा किया और खुशी खत्म, शांति खत्म। पर मैंने उसके पीछे एक शब्द लगा दिया, राइटियस एंगर। गलत के लिए आवाज उठाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, लेकिन सभ्यता के साथ। सत्यता भी सभ्यता के साथ कहनी होती है, गुस्से से नहीं। आप नेगेटिव में नेगेटिव एनर्जी ऐड करेंगे तो कभी भी उसका पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं निकलेगा। भाव कहने का है कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं आपको यही नहीं पता चलेगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हर रॉन्ग आपको क्या लगने लगेगा? राइट। पर चिंतन करना चाहिए, एक दूसरे का सुनना, करना, सोचना, वर्णन करना, राइट रॉन्ग। पर लोग तो कहते हैं हार्मलेस गॉसिप। हार्मलेस माना ये गॉसिप ऐसी है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी बैटरी खत्म हो जाती है, सारी सोल पावर खत्म हो जाती है, और हम कहते हैं हार्मलेस गॉसिप। वो हार्मलेस नहीं है, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। तो पहली चीज जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो रोज 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 हमें सत्य ज्ञान सुनने को मिलता है। सत्य संग, सत्य का संग, इन द कंपनी ऑफ ट्रूथ, कि पता तो चले राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, क्लैरिटी तो मिले। इसलिए उसको कहते हैं वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। तो वो सबसे पहले अपने बच्चों को आकर के क्या देता है? बुद्धि। तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना यहाँ पर, तीसरा नेत्र खुला, मतलब बुद्धि मिली, समझ मिले राइट क्या है रॉन्ग क्या है। और फिर उस राइट रॉन्ग पर चलने के लिए क्या चाहिए? फिर उस राइट रॉन्ग पर चलने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। कई बार हमें पता होता है ये रॉन्ग है, पता होता है, कई बार आपने जानते हुए भी कभी कभी गलत किया, आपको पता है ये रॉन्ग है, फिर भी रॉन्ग कर रहे हैं, किया क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं थी? शक्ति। हमें लगा अगर हमने सही करा तो कई सारे डर होते हैं कि नाराज ना हो जाए, नौकरी ना छूट जाए, समाज कुछ नहीं बोले। अरे इतना सा, कल मुझे कोई मिल रहा था, इतना सा, मुझे पता है ड्रिंकिंग गलत है, तो भी मैं अपने दोस्तों को नहीं बोल पाता हूं कि मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ना बोला तो वो मुझे क्या कहेंगे, वो मुझे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे वो मुझे? सोशल ड्रिंकिंग, बताओ। किसी रॉन्ग को जस्टिफाई करने के लिए तो हम कहीं तक भी नीचे उतर जाते हैं। तो वो चीज रॉन्ग है, हर चीज के ऊपर लिखा है, इट इज इंजीरियस टू। कम से कम रॉन्ग को रॉन्ग समझ करके तो करो, तो भी ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे पता है गलत है लेकिन मुझे करना है, तो भी समझ में आता है। मुझे पता है ये गलत है, मुझे पता है मेरे शरीर के लिए गलत है, मुझे पता है इससे मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है, मुझे पता है इसमें मेरा गुस्सा बढ़ जाता है, परिवार को नुकसान होता है, तो भी मुझे करना है, समझ में आता है। पर हम रॉन्ग को क्या सिद्ध करना चाहते हैं? राइट। और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, कभी कभी कौन सी ड्रिंकिंग करनी पड़ती है? सोशल ड्रिंकिंग। क्यों? सोशल ड्रिंकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या कहेंगे लोग आपको? सोचो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? आप कौन हो? बोरिंग हो और ओल्ड फैशनड हो और हाँ एडवांस्ड नहीं हो। नहीं बनना है हमको एडवांस्ड। ऐसा एडवांस्ड आपको बनना है जो आपके शरीर को भी नुकसान कर रहा है, आपके मन को भी नुकसान कर रहा है, ऐसा एडवांस्ड बनना है आपको? बनना है ऐसा एडवांस? अगर किसी ने कह भी दिया आपको कि आप ओल्ड फैशनड हो, एडवांस्ड नहीं हो, बोरिंग हो, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? इन चीजों को कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना शुरू करना पड़ेगा। भी असत्य की दुनिया है ना, सब रॉन्ग हो रहा है, तो उसमें कोई राइट करता है ना तो थोड़ा अलग लगता है वो, तो समझ लेने का कि अच्छा ठीक है, अगर हम ओल्ड फैशनड है। अच्छी ओल्ड फैशन की बात नहीं है, ओल्ड और न्यू फैशन क्या होता है? वो करना है जो राइट है, वो फैशनेबल है जो राइट है। और अगर ऐसे दोस्त आपसे नाराज हो जाते हैं तो आपने ऐसे दोस्त क्यों बनाए हुए हैं? पूछो ना अपने से, ऐसे दोस्त क्यों हमने बनाए हुए हैं जो हमारे सही कर्म करने से क्या हो रहे हैं? कम से कम ये भी कहें, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, आप नहीं करते ना बहुत अच्छा है, हमारे से तो छोड़ ही नहीं जाती, आप हमें इंस्पायर करते हो, आपके साथ साथ रहते रहते आज नहीं तो कल हमारी भी छूट जाएंगी। तो भी समझ में आता है कि ठीक है, बेचारी आत्मा कमजोर है, वो कर रही है, पर वो समझती है कि शायद मेरे संग में रहते रहते उसकी भी छूट जाएंगी, पर वो तो क्या कह रही है, अगर आप मेरे साथ नहीं करोगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तो कम से कम दोस्त तो ऐसा होना चाहिए जो हम जो हैं जैसे हैं हमें वैसा स्वीकार करे। बाकी सारे रिश्ते तो हमारे चॉइस के नहीं होते, फ्रेंड्स तो हम चूज करते हैं, अपनी मर्जी से चूज करते हैं, कम से कम वो फ्रेंड तो चूज करें जो हम जो हैं जैसे हैं वैसे हमको क्या करे, स्वीकार करे। वो भी अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मैं जो हूं जैसा हूं, इट्स टाइम टू थिंक कि वो फ्रेंड हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। सत्य का संग नहीं करेंगे तो जिसका संग करेंगे उसका रंग लगेगा। बचपन में वो दिखाते थे ना सिखाने के लिए, एक टोकरी है उसमें एक खराब सेब है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता था, रात भर में सारे खराब हो जाते थे। अभी हाल ऐसा है कि टोकरी में सारे खराब सेब हैं, एक ठीक है। अगर उसने अपने को प्रोटेक्ट नहीं किया और इतने सारे खराब हैं तो कब आपको रंग लग जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और रंग लगने के बाद ऐसा होता है रॉन्ग राइट लगता है। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी चाहिए कि राइट और रॉन्ग क्या है, इसलिए इसको लास्ट डे नहीं समझना। स्पिरिचुअलिटी मेरे जीवन का हिस्सा है, रोज वो परमात्मा ज्ञान का सागर रोज मुझे महावाक्य सुनाता है, रोज हम सारे के सारे जो आप बैठे हैं ना रोज सुबह सुनते हैं, जिसको हम कहते हैं मुरली, ज्ञान की मुरली, ज्ञान की मुरली। समझ में आए, हमारी बुद्धि डिवाइन होती जाए, पावन होती जाए, उसको समझ में आए, फिर हम रोज मेडिटेट करते हैं। जैसे आप बॉडी को अगर हेल्दी बनाना चाहते हो तो दो चीजें चाहिए होती हैं, अच्छा खाना और दूसरा एक्सरसाइज। तो ये ज्ञान सुनना जो है ना, ये अच्छा खाना है। सिस्टर वर्षा बेन एक मिनट खड़े हो जाओ। एक्सरसाइज और डाइट में परसेंटेज बताना, कितना डाइट और कितना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 30% और डाइट 70%। थैंक यू सिस्टर, मैं नहीं कह रही, डाइटिशियन कह रही है। मन अगर आपने रोज अच्छा सुनना शुरू कर दिया ना तो कितना परसेंट काम आपका हो गया, 70%। कई लोग 80% भी कहते हैं, 80% डाइट 20% एक्सरसाइज, माना 80% तो सिर्फ अच्छा सुनना है। तो आप रोज अच्छा सुनते जाओगे ना, नहीं भी योग लग रहा है छोड़ो, नहीं लग रहा है नहीं चल, बुद्धि साफ होगी तो योग लगेगा, बुद्धि मन को शांत करेगी। पहले बुद्धि प्योर चाहिए, प्योर बुद्धि मन को शांत करेगी तो मन मनाभव हो सकेंगे। बुद्धि में कचरा भरा हुआ है, मन ओवरथिंक कर रहा है और हम सोच रहे हैं कि हमारा क्या लगे योग, और साइलेंस में बैठते हैं, लोग डर जाते हैं ये मैं ही हूं ना, कभी मुलाकात नहीं की होती ना अपने से, सारा समय इससे बात कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने से मुलाकात करते ही नहीं है। साइलेंस से तो हमें डर लगता है, अकेला रहने से हमें डर लगता है, साइलेंस फॉरेन लैंग्वेज हो गई है, समझ में ही नहीं हमें आती है। दो मिनट भी अपने साथ बैठते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है, और थोड़े समय के बाद ऐसा होगा आपको कितने कितने दिन भी अगर अकेला रहना पड़ेगा ना आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप किसकी कंपनी में हैं, अपनी कंपनी में, और अपनी कंपनी में सुख मिलेगा आपको, क्योंकि आपका मन मंदिर की तरह हो जाएगा। अभी ये मन मंदिर की तरह नहीं है ना, बहुत कुछ इसके अंदर नेगेटिव वेस्ट है, इसलिए अपने साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। किसी से बात कर लें, खाली भी घर में होंगे रेडियो चलता रहे, टीवी चलता रहे, कोई आवाज हो, टोटल साइलेंस अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर किसकी आवाज सुनाई देती है। और एक समय तो फिर अपनी आवाज सुननी पड़ती है। कौन सा समय? सारा दिन तो इधर उधर बिजी कर लेंगे, किस समय फिर अपनी आवाज सुननी पड़ती है? सोने के समय। इससे तो बहुतों को नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती तो फिर वो किसका सहारा लेते हैं? स्लीपिंग पिल्स या कोई ना कोई एडिक्शन। लेकिन फिर वो एडिक्शन की डोज आपको बढ़ानी पड़ेगी। जितनी वो आज आपको हेल्प कर रही है वो उतनी पे नहीं करेगी, ग्रेजुअली 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 आपको उसकी इतनी डोज बढ़ानी पड़ेगी। और डिपेंडेंसी देखो कितनी है, लोग बेचैन और एंजाइटी फील करने लगते हैं अगर उनका कोई भी आधार छूटने लगता है, कोई भी आधार छूटने लगता है। तो 70-80% काम कैसे हो जाएगा? अगर हम रोज क्या करेंगे? ज्ञान सुनेंगे, सुनते सुनते मन शांत हो जाएगा। नेक्स्ट जो 20% काम है वो है मेडिटेशन। किससे कनेक्ट करना? परमात्मा से। अकेले जीवन नहीं जीनी है। एक बच्चा अकेले, ऑर्फन हो, अनाथ, उसका जीवन कैसा होता है? कैसा होता है एक अनाथ का जीवन? हाँ, क्या फीलिंग होगी एक ऑर्फन की? हाँ जी, लोनलीनेस, डर, सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं, प्रोटेक्शन की फीलिंग नहीं। और एक बच्चा देखो जिसके पेरेंट्स हैं, फैमिली है उसको, वो कैसा होता है? निश्चिंत होता है वो, बहुत बहुत निश्चिंत होता है। जो ऑर्फन होता है उसको हमेशा एक फियर रहता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इनसिक्योरिटी रहती है। और जो पेरेंट्स के साथ है उसको हमेशा प्रोटेक्टेड और सिक्योर फील होता है। अकेले जीवन जीना मेहनत का जीवन है। क्यों मेहनत का जीवन जिए हम? जब भगवान ही हमारा हो गया, उसका ज्ञान ही हमारा हो गया, उसकी शक्तियां ही हमारी हो गई, तो हम मेहनत वाला जीवन जिएंगे कि मौज वाला जीवन जिएंगे? कौन सा जीवन जीना है, मेहनत वाला कि मौज वाला? चूज करो। तो मौज वाला जीवन जीने के लिए उस परमात्मा के साथ गहरा रिश्ता बनाना है। वो मेरा है, लेकिन किसी भी मेरे के साथ रिश्ता, आज दो जने भी हैं, आप पहली बार किसी से मिलते हो तो उससे रिश्ता कैसे बनता है? अगर उसको रिश्ता बनाना है तो कैसे रिश्ता बनाते हैं? मदर और चाइल्ड भी है ना, उनको भी रिश्ता बनाना पड़ता है। आज बायोलॉजिकल मदर कोई है, पालने वाली मदर कोई है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, बच्चा किसी और की केयर में पलता है तो उसकी अटैचमेंट किससे हो जाती है? पालने वाले से, क्योंकि रिश्ता तो वहां बना ना। वो कहते ठीक है जन्म दिया पर ठीक है, इट इज ओके, पर उसकी ज्यादा लव और बॉन्डिंग किसके साथ होती है? जिसने पाला है, क्योंकि रिश्ता बनाया है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुई है। तो कोई भी रिश्ता बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कैसे बनता है कोई भी रिश्ता? हाँ जी, बातचीत। सिंपल है ही क्या इसमें डिफिकल्ट? रिश्ता करना माना बातचीत करना। आज माँ बाप और बच्चे भी हैं, बातचीत नहीं करे रोज, थोड़ी देर भी बातचीत नहीं करे, 5 मिनट भी बातचीत नहीं करे, हस्बैंड वाइफ बातचीत नहीं करे, तो धीरे धीरे उस रिश्ते में क्या आने लग जाएगी? दूरी। जैसे आपके कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, फिर आप कॉलेज छोड़ देते हो, फिर थोड़ा समय आप कोशिश करते हो उनसे टच में रहने की, फिर आप आगे आगे अपनी लाइफ में बिजी होते जाते हो, फिर वो टच छूट जाता है, कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन छूट जाता है, तो धीरे धीरे उस रिश्ते में क्या आने लगती है? दूरी। जिनके साथ आप उठते बैठते खाते पीते थे, फिर आप उनको कभी कभी कॉल करते हो, कहते अभी अभी वैसा नहीं है जैसे पहले जैसा था। क्यों? क्योंकि डेली लेवल पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसे परमात्मा चैतन्य है, लिविंग एनर्जी है, यही तो कहते हैं ना, वो कौन है? सत्य चित आनंद स्वरूप है, लिविंग है। आज टेलीपैथी आपने सुना? टेलीपैथी होती है, क्या होता है टेलीपैथी में? आप किसी को याद करते हो, उसके पास आपका संकल्प पहुंचता है, कभी कभी उसका फोन आ जाता है, वो कहता है मैं भी आपको याद कर रहा था। किस किस ने ये टेलीपैथी का एक्सपीरियंस किया हुआ है कभी भी? वेरी नाइस। टेलीपैथी जब भी आपने एक्सपीरियंस की है किसके साथ होती है? अननोन के साथ नहीं हो सकती। जिसके साथ कैसा रिलेशनशिप हो, क्लोज, बहुत क्लोज, तभी टेलीपैथी होती है। जैसे बच्चा विदेश में भी है, वो बीमार है, तो वो मम्मी को फोन नहीं करता है, लेकिन वो मम्मी के बारे में सोचना शुरू करता है। मम्मी होती ना, वो गर्म पानी देती, फिर वो शहद देती, फिर वो ये, वो सोच रहा होता है कि वो क्या क्या करती, वो मुझे ऐसे ध्यान रखती, तो वो सारी मेमोरीज उसको सोच में आ जाती है। अब बेटा भी मम्मी के बारे में सोचता रहता है, मम्मी भी किसके बारे में सोचती रहती है, सोचती रहती है, वो भी दिन में कनेक्शन तो जुड़ा ही होता है, फोन के बाद तो वैसे ही नहीं टूटता है, हम दिन में इतनी बार बात करते हैं तो फोन रखने के बाद भी हम कनेक्टेड तो उससे ही होते हैं। तो वो जैसे जैसे सोचता है उसका वाइब्रेशन ट्रैवल करता है, और वाइब्रेशन को ट्रैवल करने में कितनी देर लगती है, कोई टाइम स्पेस का बैरियर वाइब्रेशन को तो है नहीं। तो वो जैसे ही वाइब्रेशन टकराता है, वो वाइब्रेशन किसको पहुंचता है, किसको पहुंचता है, मम्मी को। उसको कभी कभी ये डिपेंड करता है कि कितना मन क्लीन है। अगर बहुत मन और बुद्धि क्लीन होगी ना, तो उसको लिटरल सुनाई भी दे देगा कि वो क्या सोच रहा है, सुनाई दे जाएगा। सुनाई नहीं देता है तो महसूस तो हो जाएगा, और उसको क्या महसूस होता है कि शायद कुछ ठीक नहीं है, हो जाता है आपको फील के नहीं। और फिर आप कहते हो मेरे को तो सुबह से ही लग रहा था कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, फोन किया पता चला वो बीमार है, मुझे तो पता चल रहा था। और फिर कभी कभी घर के दूसरे लोग कहते हैं आपको कैसे पता चल जाता है, कैसे, क्यों पता चल जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों का गहरा रिश्ता है, तो दोनों को हमेशा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसके सोच से भी समझ जाते हैं। जैसे कभी कभी आप एक साथ पार्टी में जाओ और आप किसी हस्बैंड वाइफ साथ में गए, आप किसी को देख के समझ में आ जाते आप चलने का समय हो गया, आ जाते देख करके नहीं आ जाते, वो बोल नहीं रहे हैं पर वो सोच रहे हैं कितना और कितनी देर, चलो चलो, आपको वाइब्रेशन आ जाता है कि नहीं आ जाता, फिर आप युक्ति से कहते चलो अभी हम चलते हैं। मैंने क्लोज रिलेशनशिप में इट इज नॉट ऑलवेज टॉकिंग यू पिकअप वाइब्रेशन। अब अगर हम आत्मा आत्मा एक दूसरे का वाइब्रेशन पिक कर सकती है, तो आत्मा परमात्मा का और परमात्मा आत्मा का वाइब्रेशन पिक कर सकती है कि नहीं कर सकती है, कर सकती है कि नहीं कर सकती, जोर से बोले हाँ ना। कनेक्शन होगा तो करेगी, और कनेक्शन के लिए क्या चाहिए, कनेक्शन के लिए क्या चाहिए, रिश्ता। कह नहीं सकते तुम्हें हो माता पिता, वो रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। एक बारी ना चर्च में एक छोटा सा बच्चा गया, सामने पादरी था, वो कुछ कुछ बोल रहा था, बच्चे ने भी इधर से कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया, पादरी सोच में पड़ गया इतना छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा है। खैर प्रेयर पूरी होने के बाद वो उस बच्चे के पास गया, कहा तुम क्या कर रहे थे, तो बच्चे ने कहा आप क्या कर रहे थे, उसने कहा पहले मैंने पूछा ना, तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे। बच्चे तो थोड़े से हट करते हैं, उसने कहा नहीं नहीं पहले आप बताओ आप क्या कर रहे थे। फादर ने कहा जाने दो, उसने कहा मैं तो अपनी प्रेयर बोल रहा था, अब तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे, उसने कहा मैं भी अपनी प्रेयर बोल रहा था। फादर ने कहा इतना छोटा बच्चा इसको क्या प्रेयर आती है, कहा सुनाओ अपनी प्रेयर। तो बच्चे ने क्या कहा, आप सुनाओ अपनी प्रेयर। तो फादर ने फटाफट फटाफट अपनी प्रेयर सुना दी, फिर कहा अच्छा तुम सुनाओ तुम क्या कर रहे थे, उसने कहा मैं तो एबीसीडी गा रहा था, मुझे तो यही आता है मैं तो एबीसीडी गा रहा था। तो कहा कोई ऐसे भगवान को याद करते हैं एबीसीडी गाकर याद करते हैं, तो उसने कहा देखो आपकी जो प्रेयर थी उसमें भी यही 26 अल्फाबेट्स थे, मेरी जो प्रेयर थी उसमें भी यही 26 अल्फाबेट्स थे, फर्क कितना है, आपकी प्रेयर में बहुत सुंदर तरीके से अरेंज्ड थे, मैंने उसको कहा जैसे अरेंज करने कर रहे। स्टोरी बहुत अच्छा मीडियम होता है शिक्षा देने का, थ्योरी समझ में नहीं आती है, क्या समझ में आती है, स्टोरी। क्या मतलब है स्टोरी का, भगवान को क्या समझ में आता है, भाव। हम जो कई बार प्रेयर्स रोज रोज गाते हैं वो तो हमारी लिखी हुई नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, किसी और के लिखे हुए हैं, किसी और की भावना है, हमारी थोड़ी ना वो प्रेयर है। हमारी बातचीत उसके साथ हमारी होगी, मेरी प्रॉब्लम, मेरी खुशी, मेरा ग्रेटिट्यूड, मुझे किस चीज का धन्यवाद करना है, मुझे किस चीज की बात करनी है, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं उसके महिमा में क्या गीत गाना चाहता हूँ, मुझे उससे क्या प्राप्ति हुई है, मेरी प्रेयर तो मेरी होगी ना। इतना हो सकता है कि बहुत सुंदर पोइट्री के फॉर्म में नहीं हो, सॉन्ग के फॉर्म में नहीं हो, मुझे जैसा बोलना आता है मैं वैसे बात कर लेता हूँ, पर है तो मेरे दिल की बात ना। आज अब आप किसी को हैंड रिटन कार्ड दो और वो छपा हुआ आर्टिस्ट का कार्ड दो, आपको ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है? कहते कि इसके दिल के भाव है, कहीं से उठाए हुए नहीं है, जैसे भी हैं ये चार लाइनें इसने खुद लिखी हैं। तो कोई खुद लिखता है तो आप उस कार्ड को कितना संभाल के रखते हो, ये इसके बोल है। छोटा सा बच्चा मदर डे पर ऐसे ऐसे अजीब गरीब सा वो पेंटिंग बना करके लाता है, मदर उसको सालों साल तक रखती है, ये ना इसने मुझे जब 5 साल का था मदर डे पर ये कार्ड दिया था। कुछ नहीं है उस कार्ड के अंदर, भावना है, लिखा भी नहीं है ऐसा ऐसा, कोई भी कलर ऐसे ऐसे कर दिए, लेकिन वो कार्ड के अंदर क्या है, भावना है। वो 15 साल तक भी संभाल कर उसको दिखाते, आपने ना ये मदर्स डे पे पहला कार्ड मुझे दिया था, तो कार्ड की वैल्यू नहीं थी, उस कार्ड में क्या थी, भावना। भगवान भावना का भाड़ा देता है, भावना का भाड़ा। मैंने कभी उससे वो रिश्ता जोड़ करके बातचीत करी है? योग क्या है? योग माना किसी को याद करना। जैसे आप किसी को याद करते हो तो उसकी बातें याद करते हो ना। अभी अभी आप किसी को याद करो, घर में कोई बच्चा है, कोई है, तो क्या याद करते हो? उसकी विशेषताओं को याद करते हो, उसकी बातों को याद करते हो, उसके साथ हम कहीं घूमने गए थे याद करते हो। कई लोग आजकल ऑफिस में होते हैं, अपने बच्चों की फोटो लगाते हैं टेबल पर, रखते हैं कि नहीं रखते, फिर देखते देखते खो जाते हैं उसको याद करने में। कोई आता है, क्या सोच रहे हो? तो कहते नहीं, मैं बस फोटो देखते देखते याद कर रहा था, हम संभल करके वहां घूमने गए थे। तो फोटो जड़ है, लेकिन उस फोटो से क्या ट्रिगर हो गई? यादें ट्रिगर हो गई, क्योंकि उसके साथ रिश्ता है। ये जो आप सब तरफ फोटो लगे हुए देख रहे हो ना, ये थोड़ी ना भगवान है, ये तो जड़ है। भगवान तो चैतन्य है। ये फोटो कभी कभी हमने जो सुंदर रिश्ता उसके साथ जोड़ा है, जो मेमोरीज उसके साथ बनाई हैं, जो प्राप्तियां हमने की हैं, वो सारी की सारी स्मृति में आ जाती हैं, और स्मृति में आने से हमें खुशी हो जाती है। तो रिश्ता एक डेली एफर्ट है कि हम साइलेंस में बैठें और वो परमात्मा, भले ज्योति बिंदु है, मैं भी तो ज्योति बिंदु हूं, वो भी ज्योति बिंदु है। रिश्ता कोई शरीर शरीर का तो वैसे ही नहीं होता है, रिश्ता तो हमेशा किसका होता है, आत्मा आत्मा का होता है। तो बैठें साइलेंस में, बात करें उससे, अपनी दिल की सारी बात करें, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कैसे बात करता है, सारी बात करें। सारी बात करके शांत होकर बैठ जाएं, प्लेन बुद्धि होकर के बैठ जाएं, फिर देखें उसका वाइब्रेशन आपको टच होगा। परमात्मा के साथ जो रिश्ता है ये वायरलेस है, अभी तो वैसे ही वायरलेस का जमाना है, वायरलेस है ये। कोई ऐसे आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपको महसूस होगा, आपको महसूस होगा। आप साइलेंस में बैठेंगे, आपको टच होगा, हाँ ये करना है, ये राइट है। जब हमें औरों की बातें टच हो जाती हैं, तो उसकी बातें क्यों नहीं टच होंगे? भाई मुझे मिला था जम्मू में, थोड़े समय पहले फ्लड आया था, पता आपको? तो ये भाई सेंटर संभालता था, ग्राउंड फ्लोर पर सेंटर था। तो पानी जैसे जैसे ऊपर होने लगा, तो उन्होंने कहा कि अभी आप सबको ऊपर के फ्लोर पर जाना चाहिए। तो अभी नेचुरली जब हमें होता है कि यहां से यहां जाना है, तो हम किन किन चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल्स हैं, धन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा आधार पैन कार्ड। वो भाई को भी यही लगा, उसने जो भी जरूरी चीजें हैं, पानी ना आ जाए, फिर पता नहीं ये चीजें मिले कि नहीं मिले, उसने वो सब शुरू किया, उसको सब बैग बना लिया। फिर जैसे एक हैबिट पड़ी हुई है कि कुछ भी करने से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठना है, तो वो मेडिटेशन रूम में गया, हाँ बैठा साइलेंस, बाबा से बात करी, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे बोले, एकदम उसको टच आता है। घर में जितना भी खाना है वो सारा ले लो, भले बाकी सब कुछ छोड़ दो, जितना भी खाना है वो ले लो, जैसे इतनी क्लियर टचिंग थी, जो भी खाने की चीजें थी, बिस्किट ये वो जो कुछ था उसने लिया, और जो नेबर्स थे उनके थर्ड फ्लोर पर, वो भी 5-6 जने थे, ये भाई भी थे। कहा हमको वहां पर 3.5 दिन रहना पड़ा जब तक हमें कोई रेस्क्यू करने आता, और उन 3.5 दिन में सिर्फ एक ही चीज काम में आई, वो था खाना। और वो सारे के सारे वैल्यूबल्स जो हम इकट्ठे कर रहे थे, ये कार्ड, ये डॉक्यूमेंट, थोड़े समय के बाद गवर्नमेंट ने सब कुछ फ्री बना करके दिया, क्योंकि उनको पता था कि कई लोगों का वो चीजें नुकसान हो गई हैं। पर उस समय हमारी लाइफ को वो डॉक्यूमेंट्स थोड़ी ना सेव करते, क्या सेव करता, खाना। पर जरा सी टचिंग, राइट टचिंग, कि इस समय क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि हलचल में मन हलचल में आ जाता है तो निर्णय गलत हो जाता है। तो जब हम परमात्मा से बहुत कंबाइंड रहते हैं, हर चीज उससे पूछ कर करते हैं, जैसे आपके घर में बड़े होते हैं तो आप हर चीज क्या करते हो, उनसे थोड़ा सा पूछ लेते हो, आपको पता भी होता है तो भी आप पूछ लेते हो ना थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है वो आपसे थोड़े से ज्यादा अनुभवी। ऐसे हर चीज जब पूछ कर करते हैं, हर चीज उसको साथ में लेकर के करते हैं, वो बुद्धिवानों का बुद्धिमान है, वो मेरी बुद्धि को टच करता है, मेरा हर निर्णय राइट होता है, मेरा हर कर्म राइट होता है। और ज्ञान भी मिलता है, समझ भी मिलती है, फिर शक्ति मिलती है। थोड़ा समय जब हम, कहां रहता है परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का घर कौन सा है, ये तो स्टेज है जहां हम पाठ बजा रहे हैं, रहने वाला वो कहां का है, परमधाम। तो जब हम यहां से डिटैच होकर के उसके घर में उसके साथ बैठते हैं तो उसके वाइब्रेशन को हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आप सागर के किनारे बैठो तो क्या होता है, थोड़े समय के बाद कैसा लगना लगता है, ठंडक मिलती है कि नहीं मिलती। अग्नि के सामने बैठो, माना जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उसके साथ बैठेंगे तो उसका वाइब्रेशन आप अब्सॉर्ब करने लग जाएंगे। पहाड़ों के बीच में बैठते हैं, कहते बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसकी स्टिलनेस हमारी डिविनिटी को इमर्ज करने लगती है। ऐसे जब हम थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके परम धाम में परम पिता के साथ बैठते हैं तो वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, उसके साथ बैठने से ही आत्मा के भी 7 गुण कौन से, आत्मा के 7 गुण कौन से हैं, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, वो इमर्ज होने लगते हैं। आप जिसके साथ बैठेंगे उसके संग का रंग चढ़ेगा। जैसे आप टीवी देखते हैं तो बहुत सारे चैनल होते हैं, तो आप एक चैनल देख रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि दूसरे चैनल पर कुछ आ नहीं रहा है, पर आपको सुनाई वही देता है जिस चैनल से आपने ट्यून इन कर रखा है, ऐसा ही है ना। बाकी सारे चैनल का तो आपको सुनाई नहीं देगा, पर उसमें आ तो रही है ना, किसी में कोई फिल्म, किसी में कोई सॉन्ग। ऐसे ही हम जिस चैनल से ट्यून करते हैं हमें वही सुनाई देता है। उसको याद करो जिससे कभी दुख मिला है, थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। उसको याद करो जिससे कभी सुख मिला है, थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, अच्छा लगने लगेगा। माना जिससे आप ट्यून इन हो गए वही चीज आपको सुनाई देगी, वही चीज आपको महसूस होगी। बहुत सारे चैनल हैं हमारे पास, व्यक्ति को भी याद कर सकते हैं, बच्चे को भी याद कर सकते हैं, घर को भी याद कर सकते हैं, धंधे को भी याद कर सकते हैं, भगवान को भी याद कर सकते हैं। किसको याद करना, याद करना कोई सीखने की चीज नहीं है, याद तो बहुत नेचुरल है। बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता है, उसको याद करना नहीं सिखाया जाता। याद हमें करना आता है, हमें डिसाइड करना है हमें किसको याद करना है। जिसको याद करेंगे, जो उसकी स्थिति होगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अभी करके देखो उसको याद, जिसने कभी हमें धोखा दिया है, याद करते हमारा चेहरा ही बदलने लग जाता है ना, क्योंकि वो सोच चलता है, वो वाइब्रेशन है। वो जो परम पिता है वो परफेक्ट है, प्योर है, लविंग है। हमारा हक है कि हम भगवान के प्यार को अनुभव करें, हमारा हक है। हम क्यों लोगों से भिखारी की तरह प्यार मांगते हैं, आपसे चाहिए, आपसे चाहिए। हमें नहीं चाहिए किसी से, हम तो प्यार के सागर के बच्चे। हम उसके साथ बैठ करके अनुभव करके और ही क्या करेंगे, सबको देंगे, हम लेंगे थोड़ी ना। तो मेडिटेशन 3 स्टेप है, इनवर्ड, अपवर्ड फिर आउटवर्ड, पहले अपने को पहचाना फिर उसको पहचाना, उसके साथ रिश्ता जोड़ा, अपने को भरा, फिर जब हम लोगों के बीच में आए, 4 से 8 का समय सुबह अपने लिए होना चाहिए। फिर आज आप सारा दिन कहां जाएंगे? जाएंगे ना घूमने आज, तो आज आप कैसे घूमने जाएंगे? आज आप पीस मैसेंजर की तरह घूमने जाएंगे, आज आप वो वाइब्रेशन रेडिएट करते हुए जाएंगे। आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप भरे हुए, आप वो रेडिएट करेंगे। घूमने आप जिस दिन जाते हैं उस दिन ड्रेस फ्रेस पहन करके फिर क्या लगाते हैं? परफ्यूम लगाते हैं। और घूमने वाले दिन थोड़ा सा क्या करते हैं? सादा लगा लेते हैं। किसके लिए लगाते हैं आप परफ्यूम? किसके लिए लगाते हैं? अपने लिए लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं ना। पर आप लगाते अपने लिए हैं, पर जो जो आपके संग में आएगा उसको मिलना तो है, क्योंकि वो आपने लगाया हुआ है, तो वो फ्रेग्रेंस आपसे सबको जानी तो है। लगाया आज परफ्यूम? जाके लगाएंगे, लगा लेना। इसके साथ साथ एक और परफ्यूम लगा लो, कौन सा? खुशी, प्यार, मजा, मौज, आनंद। होता है, कुछ होता रहे, कोई बात मुझे हिला नहीं सकती। हम खुशी के लिए घूमने नहीं जा रहे, हम खुशी से घूमने जा रहे। ऐसा है कि घूमेंगे तो खुशी मिलेगी कि खुशी से घूमने जा रहे? खुशी से घूमने जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है। एक आध कोई लेट आएगा हम उसको खुशी से कहेंगे लेट आया है, अगली बार टाइम पर आना। अपसेट नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, सारा दिन हम खुशी प्यार रेडिएट करते हुए दिन बिताएंगे। कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो वो परफ्यूम भी लगाना है, ये परफ्यूम भी लगाना है, लेकिन ये परफ्यूम लगाने के लिए किससे जुड़ना पड़ेगा? परमात्मा से। तो जुड़े अभी हम, पहले एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं कुछ आपको बोलती जाऊंगी, आप वो चीज देखते जाना, ठीक है? तो सब कंफर्टेबल होकर बैठे। अभी अभी आप देखो कि आपका जाने का दिन आ गया है। ब्रदर व्हाइट लाइट रख सकते हैं, व्हाइट लाइट रख सकते हैं। आपका जाने का दिन आ गया है और आप देखो कैसे आप इस कैंपस से निकल रहे हो, कार में बैठे, देखते जाना, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, आपकी जो भी ट्रेन है आप उसमें बैठे, फ्लाइट में बैठे, अपने घर पहुंच गए, आपने घर में बेल बजाई और घर वाले आपको रिसीव कर रहे हैं, फिर आप उनके साथ बैठे हुए हैं और आप उनको यहाँ की अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, जो आपने देखा सुना घूमा वो भी बहुत मजे से सुन रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। फिर वो आपको लेकर जाते हैं किचन में, फ्रिज खोलते हैं और वहां पर आपकी फेवरेट आइसक्रीम पड़ी हुई है, और वो जो भी आपसे मिल रहे हैं, आपका ग्रैंडसन, ग्रैंडचिल्ड्रन, सन, वो एक आइसक्रीम का स्पून लेता है और ये गई आपके मुंह में, और आप आइसक्रीम का मजा लेकर उनको सारी बातें शेयर करके अभी आ जाओ वापस इसी हॉल में। अच्छा, दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया? हाँ जी, घर पे पहुंच गए थे, घर दिखाई दिया सभी को? किससे मिले जाकर? बच्चों से मिले, सुनाई उनको बातें यहाँ की? कैसे सुनी उन्होंने? बहुत प्रेम से सुनी। फिर आपने खाई आइसक्रीम? कौन से कलर की थी? दिखाई भी थी, मजा आया बिना कुछ करे? आनंद ले लिया कि नहीं ले लिया सारा का सारा? अच्छा, ये सब जब आप देख रहे थे आपको मुश्किल लगा? नहीं लगा। आंखें बंद करनी पड़ी? नहीं, खुली आंखों से देख पाए ना। आपने अभी अभी क्या किया? मेडिटेशन, ये मेडिटेशन है। पर आपने किसको याद किया? घर को याद किया, बच्चों को याद किया, याद भी किया, फील भी किया। मन संकल्प करता गया, बुद्धि उसको देखती गई, दोनों साथ में काम कर रहे थे। मन सोच रहा था, बुद्धि देख रही थी। ऐसा नहीं था मन कह रहा था घर और आप कहीं और थे, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मन कहे घर, बुद्धि कहे ऊपर, माउंट आपू, माउंट घर का माउंट, कहाँ बहन घर भेज रही है, अभी तो हमने घूमा ही नहीं है, वो भी हो सकता है। तो मन संकल्प कर रहा है, बुद्धि देखती जा रही है, हम फील करते जा रहे हैं। ये हम किसके घर गए थे? शरीर के घर। बहुत बार गए हैं इसलिए इजी था। अब हम किसके घर जाएंगे? आत्मा के घर। बहुत बार गए हैं, घर है वहीं से आए हैं, वही रहने का जगह है, वहीं हमारा पिता है, वहीं पर सब कुछ है जो मुझे चाहिए। केवल उतना समय के लिए और कुछ नहीं सोचना है, मन कहीं जाए उसको लेकर के आ जाओ, क्योंकि उस घर में ही अतीन्द्रिय सुख है, और वो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा तो यहां से हमारी बुद्धि डिटैच होगी। चले उस घर में, चलो कंफर्टेबल होकर बैठो। अभी चेंज कर सकते, कुछ पलों के लिए कंफर्टेबल होकर बैठे, आंखें खुली रखें, सिर्फ 3 मिनट करेंगे लेकिन आंखें खुली रखें कुछ पलों के लिए। इस पुरानी दुनिया से न्यारे होकर अपने को देखें कि मैं मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और थोड़े समय के लिए अपने को चार्ज करने के लिए मैं अपने घर जाता, इस शरीर को यहीं छोड़ ऊपर की ओर चले, इस 5 तत्वों की दुनिया से परे, ग्रहों से परे, अपने घर में पहुंच जाए, बुद्धि की आंख से अपने घर को देखें, चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश और मेरे सामने मेरे पिता परम पिता परमात्मा, जो मेरी तरह ज्योति बिंदु है, उस परमात्मा को देखें जो परफेक्ट है, प्योर है, पावरफुल है, उस ज्योति बिंदु से प्यार की किरणें मुझे स्पर्श कर रही है, मेरा पिता, मैं जो हूं जैसी हूं मुझे स्वीकार करता है, से बहुत प्यार करता है, और मुझे प्योर और परफेक्ट बनाने के लिए आया है। वो मुझे कहता तुम मेरे हो, और मैं अपने पिता को कहता मेरे हो, आपको ही तो मैं ढूंढ रही थी, आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आपको ढूंढ ढूंढ कर तो मैं थक गई। और जैसे उस परमात्मा के प्यार का वाइब्रेशन मेरी सारी थकावट को दूर कर रहा है, जैसे पानी के झरने के नीचे बैठते हैं, आज प्यार के झरने के नीचे बैठे निस्वार्थ प्यार, उसको मेरे से कुछ नहीं चाहिए, वो तो मुझे देने आया है। मनुष्य से देवता बनाने आया है, दिली नहीं होती यहां से जाने की। ऐसा लगता है बस उस प्यार के सागर के साथ यूं ही बैठे रहे, अपने को प्यार से भरपूर करने के बाद मैं एक बार फिर से धीरे धीरे नीचे इस वर्ल्ड स्टेज पर आते अपना पार्ट बजाने के लिए। लेकिन मैं अंदर से इतनी भरी हुई हूं कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे परमात्मा का प्यार सबको देना है, यही मेरा लक्ष्य।